शिवगुरु की जय। श्री श्री राधा गोपालानंद की जय। श्री श्री गौर विदाय की जय। श्री श्री जगन्नाथ और देव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विदाय गौर प्रेमानंद समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय संख्या 52 और श्लोक संख्या 16 और 17। भगवान अपि गोविंद
शाल्वादिश्चैद्यपक्षगान्
पश्य पश्यतां सर्वलोकानां
पश्यतां सर्वलोकानां
पार्श्वपुत्र सुधामिव
पार्श्वपुत्र सुधामिव भगवान् अपि गोविन्द उपैमे कुरुद्वः वैगर्भिं विश्वसुताम् श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमत्यतरसाराध्यः शार्वादिश्चैत्यपक्षवान् पश्यतां सर्वलोकानां काश्यपुत्र सुधामिव भगवान् अपि गोविन्द उपैमे कुरुद्वः वैगर्भिं विश्वकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे
साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने शालवत तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। दरअसल सबों के देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह उठा ले गए जिस तरह निशंक गरुड़ देवताओं से अमृत चुराकर ले आया था। ओम ज्ञान दिव्यांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टम् साविनं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति सकलान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं
सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां सच नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं रङ्गाय गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महामदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरक्षे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् महेशतनयस्तद्धामवृन्दावनम् काचिदुपासना प्रजवतु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमवरं प्रेमापुमद्भो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तद्वाचरणापरः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पर आयोजित किए जाने वाले इस कृष्ण कथा के महोत्सव के तीसरे दिन पर आप सबका श्री श्री कृष्ण राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्रीमान युधिष्ठिर प्रभु का, जो हमारे बीच श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई से यहाँ पर पधारे हैं। हमारे तरुण अवस्था के मित्र हैं, सहपाठी रह चुके हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में इस दिन का आनंद लेने के लिए पधारे हैं। और आप जो भी अन्य स्थानों से यदि कोई आए हो, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। कल हम सिंहावलोकनम कर रहे थे। पिछले वर्षों में जो कृष्ण कथा में चर्चा हुई थी उसका संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहे थे। कथा की समाप्ति कल इस प्रसंग पर हुई कि भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम के साथ मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। कब चले गए? जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया था मथुरा के ऊपर, 17 बार तो श्री कृष्ण ने बड़े आसानी से जरासंध और उसकी सेनाओं को परास्त कर लिया था, परंतु उसके बाद काल यवन अपनी बड़ी सेना को लेकर मथुरा पहुंच गया। और हम संक्षिप्त में कल सुन चुके हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद के द्वारा काल यवन का वध करवा लिया और साथ साथ मुचुकुंद राजा का उद्धार भी किया, उनके ऊपर कृपा की। राजा मुचुकुंद ने जब भगवान का दर्शन किया और बाहर आ गए, उन्होंने देखा कि यहाँ सर की ऊंचाई बहुत कम हो चुकी है, पेड़ भी बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, यद्यपि उस समय द्वापर का अंत था फिर भी पेड़ बहुत बड़े हुए होंगे आजकल के समय के अनुसार, फिर भी पूर्व युगों के अनुसार तो सारी चीजें बहुत छोटी थी। इसलिए राजा मुचुकुंद समझ गए कि कलयुग आने ही वाला है, इसलिए मुचुकुंद श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार चले गए बद्री आश्रम और वहां पे तपस्या में अपने आप को तल्लीन करते। उधर श्री कृष्ण लौट कर आए और काल यवन के सैनिकों की हत्या कर दी, जो उनके पास धन आदि था वो भी ले लिया और उस धन को लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे कि अचानक क्या हो गया, वहां पर 18वें बार आक्रमण करने के लिए जरासंध अपनी सेनाओं को लेकर आया। तो उस समय श्री कृष्ण ने बलराम के साथ प्रवर्षण पर्वत में ऊपर चढ़ के वहां से कूद पड़े। जरासंध को बहुत क्रोध आया कि कृष्ण बलराम भाग के जा रहे हैं रणभूमि से, जो कि एक क्षत्रिय के लिए एक योद्धा के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, बल्कि एक क्षत्रिय को कभी भी पीठ में कोई घाव नहीं होना चाहिए। जब कोई युद्ध में जाता है तो जो भी जितने भी घाव होते हैं वो सामने की तरफ होने चाहिए, यदि पीठ में घाव है तो तिरस्कार उस व्यक्ति का है जो भाग के गया पीठ दिखा के गया शत्रु को, और तिरस्कार उस व्यक्ति का भी है जिसने ऐसे व्यक्ति के ऊपर तीर छोड़ दिया जिसने पीठ दिखाया था, तो दोनों के लिए अच्छा ही। तो ऐसे युद्ध में पीठ दिखाना वैदिक सभ्यता के अनुसार एक जघन्य कार्य था। तो जरासंध पीछा करने लगा अपने रथ के ऊपर बैठ के, परंतु पकड़ नहीं पाया। जब बड़े बड़े योगी ज्ञानी जन्म जन्मांतर तपस्या करने के बाद भी उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये एक मगध का राजा भला रथ के ऊपर बैठ के कैसे उनको पकड़ सकता था। मात्र यशोदा पकड़ पाए, उन्होंने बांध भी दिया श्री कृष्ण को गोकल से, क्योंकि श्री कृष्ण बांधे जाते हैं केवल प्रेम से। तो जब श्री कृष्ण वहां उस पर्वत के ऊपर चले तो वहां पर जरासंध ने आग लगा दी सारे पर्वत को, और जरासंध को ऐसे लगा कि अब श्री कृष्ण और बलराम इस आग में मर गए। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि असुरी वृत्ति के अनुसार लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान भी कोई एक साधारण व्यक्ति है, या चलो असाधारण व्यक्ति भी, परंतु मनुष्य है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नाप तोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु भगवान के भक्त कभी भी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, नाप तोड़ करने का प्रयास नहीं करते हैं, वो केवल भगवान के शरण में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो श्री कृष्ण और श्री बलराम तो चले गए द्वारका, उधर जरासंध ने अपनी सेनाओं को लेकर वापस मगध जाना ठीक समझा, क्योंकि अब मथुरा में कुछ कार्य था ही नहीं। जरासंध को लगा कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या हुआ? रणछोड़। जो रण छोड़कर, युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इसलिए कई लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हैं। जो लोग भक्ति के सिद्धांतों से भलीभांति परिचित नहीं होते हैं, जिन्होंने एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया हुआ होता है, जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा नहीं होती है, ऐसे लोग मात्र भगवान श्री कृष्ण की निंदा करते हैं। और निंदा करने के लिए कोई न कोई कारण तो भगवान उनको दे ही देते हैं। भगवान की लीलाएं इतनी मधुर होती हैं कि भक्त लोग उनके बारे में सुन के, कीर्तन करके, स्मरण करके आनंद के सागर में डूब जाते हैं। परंतु जो अश्रद्धालु और ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, वो तो बस मौका ही ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे और कब और किस तरह भगवान श्री कृष्ण की निंदा की जाए। जब तक हम श्री कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं, अर्थात ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण है कौन, भगवान शब्द का तात्पर्य क्या है, तो हमें श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु ऐसे लोग जब टीका करते हैं तो फिर निंदा करते हैं कि श्री कृष्ण ने बीच रात में इतने अविवाहित तरुणियों के साथ नृत्य क्यों किया, वो ऐसे रणभूमि को छोड़कर क्यों चले गए, और ऐसे अनेक लीलाओं के बारे में उनकी गैर समझ होती है, गलत समझते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को। इसलिए रण छोड़, जब भगवान श्री कृष्ण रण को छोड़कर चले गए, तो फिर आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे श्री कृष्ण डरपोक थे, भय के मारे चले गए उस रणभूमि को छोड़कर। परंतु जैसे हम सुन रहे थे कल श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का रणभूमि छोड़ के जाना ये भय का लक्षण नहीं है, बल्कि ये श्री कृष्ण की ओर से परम वैराग्य का प्रदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कभी सोचते नहीं है कि आगे चल के मेरी को निंदा करेगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। जिस प्रकार से हम सूर्य को भले कितनी भी निंदा करने का प्रयास करें, क्या सूर्य को कोई फर्क पड़ता है? सूर्य के तेज में कोई घटन होती है? ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की निंदा करता है तो भगवान श्री कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ता है, वो नारकीय अवस्था की ओर आगे बढ़ता है। प्रभुपाद जी जी के कहते हैं कि यदि कोई सूर्य को ऊपर अपना मुंह उठा के थूके सूर्य को, तो वो थूक गिर पड़ेगी उसी के मुंह के ऊपर। तो जो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निंदा करता है, इस निंदा का दुष्परिणाम उसी के ऊपर आता है। न भगवान को कोई फर्क पड़ता है और न भक्तों के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने परम वैराग्य का प्रदर्शन किया कि उनको स्तुति और निंदा से कोई लेना देना नहीं होता है। परंतु हाँ, यदि हमने भगवान की स्तुति की तो हमारा लाभ होगा, हमने यदि भगवान की निंदा की तो हमारा नुकसान होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेगा। तो खैर, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चले आए द्वारका, और फिर भगवान की द्वारका लीला प्रारंभ हुई। वैसे इसके पहले ही भगवान ने कौन सा कार्य कर दिया था? दो कार्य कर दिए थे भगवान ने द्वारका के संबंध में। पहली बात, द्वारका राज्य को समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया था। एक ऐसा अद्भुत नगर, एक ऐसा अद्भुत किला, एक शहर जिसके अंदर अद्भुत अपूर्व ऐश्वर्य आदि सब था और वहां रहने वाले निवासी परम आनंद का अनुभव करते थे। न उनको बुढ़ापा होता था, न उनको बीमारियां होती थी, न किसी प्रकार के कष्ट होते थे। तो ये दशा थी द्वारका निवासियों की। तो द्वारका की स्थापना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोए हुए मथुरा वासियों को एक क्षण में स्थानांतरित कर दिया मथुरा से द्वारका। और जब वहां पर नींद से जागे द्वारका वासी जो पहले मथुरा वासी थे, तो उन्होंने देखा कि हम तो कहीं दूसरे जगह आ पहुंचे हैं। परंतु श्री कृष्ण और बलराम पहुंचे नहीं थे। फिर अब प्रवर्षण पर्वत से कूद के फिर आराम से चले गए। भगवान अब ये पूछेंगे कि मथुरा से द्वारका की रेलगाड़ी तो थी नहीं वहां, तो कैसे चले गए श्री कृष्ण बलराम? मथुरा श्री कृष्ण बलराम को तो रेलगाड़ियों की हवाई जहाजों की तो कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो बस पहुंच गए। और फिर सबसे पहली बात, जो पहली लीला जिसके बारे में हम पढ़ते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में, वो क्या है? भगवान बलराम का विवाह, जिसके बारे में कल हमने संक्षेप में चर्चा की थी। भगवान श्री बलराम ने विवाह किया रेवती से, महाराज रैवत की पुत्री या प्रकुटनी राजा, उनका नाम था प्रकुटनी या रैवत, जो कि रेवत राजा के पुत्र थे। तो खैर, अंततः ये विवाह हो गया बलराम के साथ। और अब सुखदेव गोस्वामी रुक्मिणी माता, रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण के विवाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिए, अभी आप बैठे हो जैसे कहते कि सीट बेल्ट जो है वो लगा दीजिए। अब हम ऐसी यात्रा में जाएंगे जिसमें सुखदेव गोस्वामी बहुत मधुर रूप से वर्णन करेंगे कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का विवाह कैसे हुआ। तो ये पहले जो दो श्लोक हैं, इनमें संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी ने इस विवाह का वर्णन किया है। सबसे पहले ये याद दिलाना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी हम सबको कि जिन्होंने रुक्मिणी देवी से विवाह किया, कृष्ण वो गोविंद वो भगवान है, भगवान अभी गोविंद उपनेमे कुरुत्वः, कि हे कुरु पुत्रः, हे कुरु कुरुवंशी, कुरुओं के भीतर जो नायक है, वीर है परीक्षित महाराज, उपनेमे विवाह किया गोविंद श्री कृष्ण ने, किनसे विवाह किया? वैदर्भी अर्थात कौन? विदर्भ राज नंदिनी, विदर्भ के जो राजा थे जिनका नाम था भीष्मक सुताम, सुता अर्थात पुत्री भैष्मी, इसलिए रुक्मिणी का और एक नाम है भैष्मी। देखिए वैदिक सभ्यता में किसी भी व्यक्ति के अनेक नाम हुआ करते थे, वैसे नामकरण के समय भी चार प्रकार के नाम दिए जाते थे, वो अपने अलग विषय है। बुलाने का नाम एक, जो पत्रिका के अनुसार एक नाम, और फिर बाहर के लिए एक नाम, और ऐसे कई नाम होते थे। हाँ, परंतु ये बात तो सही है, उस समय चिंटू बिंटू करे के नाम दिए वो अच्छे, कोई सभ्य अच्छे नाम रखे जाते थे, है ना? तो खैर, और एक बात ये है कि किसी भी व्यक्ति के अनेक नाम इस दृष्टि से कहे जाते थे, केवल चार नहीं अनेक नाम होते थे, उनके माता के अनुसार, पिता के अनुसार, उनके भाई बहनों के अनुसार, उनके पूर्वजों के अनुसार ऐसे नाम दिए जाते थे। जैसे कि श्री राम के अनेक नाम है, कोई नाम बता सकते हैं आप?
रघुनंदन
का अर्थ क्या है?
कुल के वंश।
नंदन का अर्थ क्या है?
पुत्र।
जो व्यक्ति आनंद प्रदान करते हैं, नंदन वास्तव में पुत्र इसीलिए कहलाता है नंदन या नंदिनी, क्योंकि वो आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि बच्चे माता पिता को आनंद देते हैं केवल जब छोटे होते हैं, तब हम बड़े होते हैं तो जो क्योंकि वो आनंद प्रदान करते हैं इसलिए नंदन कहते हैं। रघु एक महाराज थे, राजा थे, जिनके वंश में श्री राम प्रकट हुए, इसलिए श्री राम को रघुनंदन कहते हैं, कभी कभी रघुवर कहते हैं। ऐसे अनेक नाम हैं जो केवल ये एक उनके जो पूर्वज थे उनके उनके संबंध में है। तो ये एक पूर्वज रघु के संबंध में श्री राम के कितने सारे नाम हैं। फिर उनको कहा जाता दशरथ नंदन, दशरथ सुतर। तो वैसे देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के अनेक नाम होते थे। तो रुक्मिणी के कई नाम ध्यान देते हैं वैदर्भ भी, क्योंकि विदर्भ भीष्मक जो है वो विदर्भ राजा के राज्य के राजा थे, इसलिए वैदर्भ भी और साथ साथ भीष्मक सुताम। तो उपलीने वैदर्भ भी भीष्मक सुताम। और ये रुक्मिणी देवी थी कौन, उनका परिचय क्या है? श्रियो मात्राम, श्रियो मात्राम का अर्थ है श्रीय जो लक्ष्मी देवी हैं, उनकी स्व अंश, उनकी अंश मात्राम। तो रुक्मिणी देवी कोई साधारण स्त्री या महिला नहीं है, इसलिए यहाँ गोविंद कह के श्री कृष्ण का संबोधन किया गया, भगवान और गोविंद। तो भगवान किसी साधारण महिला से तो विवाह नहीं कर सकते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जितने भी पत्नियां हैं द्वारका में वो सब अंततः विशेष हैं, साधारण जीवात्माएं नहीं हैं। तो इसलिए श्रीयो मात्राम वो लक्ष्मी देवी की अंश थी और स्वयं वरे, और उनका विवाह हुआ उपयेमे, अर्थात विवाह हुआ कहां पे कैसे हुआ, स्वयंवरे, स्वयंवर। हम सब बचपन से हमारे पाठशाला की इतिहास में हम सुन चुके हैं, राजस्थान में राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने बलपूर्वक संगीता को उठा के ले गए घोड़े के ऊपर, याद है आपके बचपन का इतिहास जो आपने पढ़ा हुआ होगा। तो स्वयंवर नहीं था वो, तो स्वयंवर वो उठा के ले गए। स्वयंवर इस दृष्टि से था कि क्योंकि वो संगीता की इच्छा के अनुसार था, कभी कभी इच्छा के अनुसार न होते हुए भी उठा के ले जाते थे, परंतु वो ठीक नहीं था जैसे रावण ने किया, रावण ने उठा लिया, परंतु वो ठीक नहीं था। मुझे याद है कई वर्ष पूर्व हमारे गुरु चंद्र प्रभु बता रहे थे, मुझे आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, कि वो एक राजनेता से मिले थे, कहां मिले थे कैसे वो अलग बात है, और वो जानते थे कि ये हरे कृष्ण मंदिर में आते थे। तो इसलिए जब राम की बात हुई तो वो कहने लगे कि रे राम ने गलत क्या किया, एक महिला पसंद आई उसने उठक लिया, क्षमा कीजिए रावण को पसंद आई महिला उठा लिया, उठा के चले गए, बुरा क्या किया, कहता मैं याद आ रहा दिया। तो ये रावण की पद्धति है। आजकल भी समाचार पत्र में कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने में आती है, बड़े दुर्भाग्यवश। परंतु क्षत्रियों के बीच में जो होता था वैसे होता था जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रुक्मिणी की इच्छा के अनुसार उठा लेते हैं, यदि इच्छा नहीं होती तो नहीं उठाते साधारणता है। जब राजकन्या विवाह नहीं करना चाहती थी तो फिर राजा नहीं करते थे उससे विवाह। तो खैर यहां बताया गया प्रमथ्य तरसा राज्य है, प्रमथ्य अर्थात दमन करके, तरसा बलपूर्वक राज्य है, जितने भी अन्य राजा और राजकुमार वहां पर उपस्थित थे बलपूर्वक उनका दमन करके वो उठाकर ले गए रुक्मिणी देवी को। कौन कौन से राजा थे, शाल्व आदि, शाल्व नाम के एक राजा थे और उनके साथ भी कई थे, चैत्य, चेद, चेद राजा के राजा चैत्य, कौन थे वो, शिशुपाल, वो शारदादीन चैत्य पक्षदान और उनके जितने भी साथी थे उन सबको, और जब वो उठाकर ले गए पश्यताम सर्वलोकानाम, तो सारे लोग देखते रह गए। श्री कृष्ण बड़ी तीव्र गति से आए और उन्होंने वैदर्भी भीष्म कसुताम रुक्मिणी को उठा लिया और वो ले गए, और सारे जितने भी राजा वहां पर उपस्थित थे वो केवल देखते रह गए। और कैसे उठा कर ले गए, एक उपमा दे रहे, दृष्टांत दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तारक्ष्य पुत्र सुधाम इव, तारक्ष्य पुत्र अर्थात तारक्ष्य अर्थात कश्यप मुनि, कश्यप मुनि का एक नाम है तारक्ष्य, तो उनके पुत्र हैं गरुड़। तो गरुड़ जी ने सुधाम इव, सुधा अर्थात अमृत, स्वर्गलोक का अमृत, वास्तविक अमृत तो कृष्ण कथा और कृष्ण नाम है। तो गरुड़ ने एक बार ये स्वर्गलोक का अमृत चुरा लिया था। कब चुरा लिया था, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में एक जगह श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार हुआ ये कि उनकी माता, गरुड़ की माता द्विजिन का नाम था विनता, उनको गरुड़ की विमाता कद्रु जो कि सर्पों की माता थी उनके पास से चुराने के लिए गरुड़ जी ने वैसे ही अमृत को चुरा लिया ताकि उनकी माता मुक्त हो जाए, कद्रु के साथ न रहे। तो इसलिए गरुड़ को कभी कभी विनता पुत्र भी कहते, वैनतेय भी कहते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा है जिसका उल्लेख सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर किया है। तो जहां तक रुक्मिणी देवी का परिचय है, श्री राजीव गोस्वामी बतलाते हैं उनके तात्पर्यों में कि श्रीयो मात्रा का तात्पर्य ये है कि रुक्मिणी देवी श्री लक्ष्मी देवी के प्रत्यक्ष विस्तार हैं, ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है श्रीयो कांता कांतः परम पुरुषः, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी कांताएं हैं वो सारे के सारे श्री है, वो सब श्री हैं, लक्ष्मी देवी हैं। श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, कांत हैं, परम कांत हैं। तो ये परम कांत परम पुरुष श्री कृष्ण की जितनी भी कांताएं हैं वो सारे के सारे लक्ष्मी देवियां हैं, साधारण कोई जीवात्माएं नहीं हैं। और ये भी कहते हैं कि पद्म पुराण बताया गया है कि कैशोर गोप कन्यास्ता यौवने राज कन्यका, श्री कृष्ण ने अपनी कैशोर अवस्था में गोप कन्याओं के साथ रमण किया, परंतु आगे चल के फिर उन्होंने द्वारका में राज कन्याओं के साथ रमण किया। वैसे शास्त्रों में यह भी बताया हुआ चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि जितने भी श्री कृष्ण के कांताएं हैं उनके साथ में रहने वाली हैं, तो वो श्रीमती राधा रानी है या तो श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होने वाली उनके अंश हैं। तीन प्रकार की संगिनियां हैं श्री कृष्ण के, एक तो श्रीमती राधा रानी जो मूल है, और उनसे तीन श्रेणियां उत्पन्न होती हैं। एक वृंदावन की गोपियां जो उनकी काया व्यू है, काया व्यू अर्थात उनके शरीर से उत्पन्न होने वाली अंश। दूसरे हैं वैकुंठ की लक्ष्मियां, और तीसरी हैं द्वारका की महिषियां अर्थात द्वारका की रानियां। तो ये सारे अंततः श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती है। और स्वयंवर जैसे हम कह चुके हैं कि रुक्मिणी देवी की इच्छा थी स्वयंवर चुग लिया रुक्मिणी ने, तो इसीलिए तो श्री कृष्ण वहां पर आए थे। वैसे देखिए रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण के साथ अनादिकाल से पर व्योम वैकुंठ में द्वारका में निवास करती हैं, तो उनका विवाह यहाँ पर होना ये एक लीला है, जिस प्रकार से सीता देवी और श्री राम का विवाह हुआ, ये तो एक लीला है। आध्यात्मिक जगत में भी एक अयोध्या है और वहां पे सीता राम की जोड़ी सदैव बनी रहती है। केवल जब सीता राम हो, लक्ष्मी नारायण हो, राधा कृष्ण हो, वो जब यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो ऐसे लीला करते हैं कि मानो कि पहली बार वो कब मिले हैं और फिर उनका विवाह होता है। श्री राम ने भी क्षत्रिय पद्धति से सीता देवी का हाथ जीत लिया मिथिला में। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पहले कभी सीता और श्री राम आपस में मिले नहीं थे, अवश्य मिले थे और सदैव रहते हैं साथ में उनके धाम में। परंतु यहाँ भौतिक जगत में ये प्रकट लीला होती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि वो पहली बार मिल रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी मिल जाती है, श्री कृष्ण को अपना मोर पंख मिल जाता है, उनको अपनी कौस्तुभ मणि मिल जाती है और उनका अर्जुन को गांडीव धनुष मिल जाता है। तो ऐसी ये सारी चीजें हैं, लीलाएं हैं, जो सदैव भगवान उनके भक्तों के साथ में रहते हैं, परंतु लीला के अनुमान को निमित्त बना के ये फिर से यहाँ भौतिक जगत में प्रकट कराते हैं। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित। भगवान भीष्म सुतां रुक्मिणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। तो अभी राजा परीक्षित कहते हैं भगवान अर्थात श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया, भीष्मक सुतां रुक्मिणीन, रुक्मिणी देवी को जो राजा भीष्मक की पुत्री थी, और रुचिर आननम, आनन अर्थात चेहरा मुख, रुचिर अर्थात बहुत आकर्षक, बहुत मोहक। तो श्रीमती रुक्मिणी देवी का मुखारविंद बहुत ही सुंदर था दिखने के लिए, मोहक और आकर्षक था। तो राजा परीक्षित का प्रश्न है कि बहुत सुंदर मुखारविंद वाली रुक्मिणी भीष्मक सुताम से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। कैसे विवाह किया, राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि या विधान के अनुसार विवाह किया। उपयेम इति श्रुतम, ऐसे मैंने सुना है, ऐसे राजा परीक्षित कहते हैं। तो ये राक्षस विवाह, ये राक्षस विधि के अनुसार विवाह, इसका अर्थ ये नहीं है कि जब राक्षसों के बीच में विवाह होता है तो उसको राक्षस विवाह कहते हैं, नहीं। विवाह के भी अनेक पद्धतियां होती हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। तो ये एक विवाह की पद्धति है जो विशेष करके क्षत्रिय समाज में पाई जाती थी, जिसमें अनेक प्रतिद्वंदियों के बीच में से एक कोई वीर राजा या राजकुमार उस राजकुमारी को बलपूर्वक उठा कर ले जाए। इसको राक्षस विधान, राक्षस विधान, राक्षस विधि कहते हैं। तो आगे फिर राजा परीक्षित कहते हैं भगवान, अभी वो इनका संबोधन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कभी कभी भगवान या भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग न केवल श्री कृष्ण के या उनके अवतारों के लिए होता है, परंतु कभी कभी उनके जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे नारद मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, उनका भी संबोधन कभी कभी भगवान या भगवान कहते होता है। तो हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ, कृष्णस्य अमित तेजसः यथा मागध शार्वादीनां जित्वा कन्या उपाहरत, कि मैं सुनना चाहता हूँ यथा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, जिनका नाम है अमित तेज, उन्होंने मागध जरासंध शाल्व शाल्वराज इत्यादि ऐसे राजाओं के बीच में कैसे उन्होंने रुक्मिणी देवी का अपहरण कर लिया। कृष्णस्यामित तेजसः, तो कृष्ण के एक नाम है अमित तेज। अमित शब्द का अर्थ क्या है? अरे राम प्रभु का है, राम प्रभु का नाम अमित है ना, तो अमित शब्द का अर्थ क्या है? जिनका कोई हम जिनको नाप तोल नहीं कर सकते, जिनका जिनकी कोई सीमा नहीं है, नाप तोल करना संभव नहीं है, तो अमित तेज अर्थात जिनके तेज का कोई नाप तोल नहीं कर सकता, कोई गणना नहीं कर सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि श्री कृष्ण का तेज यहां तक सीमित है, नहीं, दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण का तेज असीमित है, इसलिए उनका एक नाम है अमित तेज। देखिए भगवान श्री कृष्ण का वैसे तो कोई नाम नहीं है, परंतु उनके भक्त उनको नाम देते हैं उनके लीलाओं के अनुसार और उनके गुणों के अनुसार। तो भगवान का एक गुण है कि उनका उनके गुण अमित है, तेज अमित है। तो अभी आगे चल के राजा परीक्षित और कह रहे हैं श्लोक संख्या 20, ये भी सुंदर श्लोक है, इसका पठन मेरे पीछे पीछे आप कीजिए। ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या माधी लोक माल मालपा मालपहा माधी लोक मलापहा कोनु तृप्येत शृण्वानः कृतज्ञो नित्य नूतनः। हे ब्राह्मण, हे शुकदेव गोस्वामी, कृष्ण कथा के बारे में अब वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित। देखिए अब 10वें स्तर में पहुंचे हैं, तो परीक्षित महाराज पहले काफी कुछ सुन चुके हैं शुकदेव गोस्वामी से। दूसरे स्कंद से प्रारंभ हुआ शुकदेव गोस्वामी का कथन का कीर्तन, और राजा परीक्षित तब से ध्यान पूर्वक श्रवण करते आए हैं, और 10वें स्कंद के 92वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं, और इसलिए परीक्षित महाराज ने अच्छी तरह से श्री कृष्ण कथा का स्वाद लिया हुआ है। तो कृष्ण कथा के बारे में वो कहते हैं पुण्य, ये बहुत पुण्यवान है, माधी ही बहुत मधुर है, लोक मलापहा है, बेलगाम के निवासी तो जानते हैं शब्द को, मलापहारी नदी, इसको आज मलप्रभा कहते हैं, नदी का नाम है मलापहारी, मल का अपहरण करने वाली, मल को हटाने वाली। दूसरे शब्दों में यदि हमने इस नदी में स्नान किया जिसका जल दिव्य है और जिस नदी का उल्लेख पुराणों में भी आता है, तो हमारे हृदय का मल और शरीर का मल भी दोनों ही निकल जाएगा। तो मल अपहाह, तो ये और एक लक्षण है कृष्ण कथा का। कोनु तृप्येत शृण्वानः, तो जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा को सुनेगा और विशेष करके श्रुतज्ञ जो अनुभवी श्रोता है, तो फिर तो कैसे वो तृप्त हो जाएगा कृष्ण कथा को सुनकर। और कृष्ण कथा नित्य नूतन है, कभी खिसा पिटा भी नहीं लगता, जैसे हम कल भी संक्षेप में कह रहे थे, नित्य नूतना है। तो अभी वास्तव में श्री कृष्ण कथा के गुण है, पुण्य है, मधुर है, और हृदय के मन को दूर करती है कृष्ण कथा, और नित्य नूतना, और अनुभवी श्रोता तो इसका लाभ पूरी तरह से उठाते हैं। श्रीमद् भागवत में कई इस प्रकार के श्लोक सुनने में आते हैं, कोई श्लोक ऐसा बता सकते हैं आप? बहुत अच्छा, तो आपको पुरस्कार मिलना है, महाप्रसाद कुछ मिलना है। श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विदुरोति सुहृत्सताम। तो ये पहले स्कंद में है श्रीमद् भागवतम के, जिसमें सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए मुनियों के बीच में संवाद चल रहा है। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, श्रीमताम अर्थात जो लोग श्रवण करने वाले होते हैं तो उनके बारे में, स्वकथा कृष्ण, तो कृष्ण अपनी ही कथा सुनने वाले लोगों के लिए क्या करते हैं। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, और वो स्वकथा जो है कृष्ण की, वो कैसे, उसका लक्षण क्या है। पुण्य श्रवण कीर्तना अपने आप में भी बहुत पुण्यवान है, और वो कार्य क्या करती है, वो कथा हृदयस्थ, हृदय में स्थित होने वाले जितने भी अभद्र चीजें हैं, अभद्राणी, हृदय अंतः स्थ, हमारे हृदय के अंदर स्थित जितने भी अभद्र चीजें हैं, विधुन होती उनको नष्ट करती है। और श्री कृष्ण कौन है, सुहृद सताम, सताम अर्थात जो संत है, सत मार्ग पर चलने वाले संत, उनको सत भी कहते हैं। तो ऐसे जो सताम संतों के जो सुहृद हैं भगवान श्री कृष्ण, जब वो देखते हैं कि उन्हीं की कथा, स्वकथा कोई व्यक्ति सुन रहा है श्रीमताम, तो उनके लिए क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो जो कि हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, वो उनके हृदय में स्थित जितने भी अभद्र चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उनका विनाश करते हैं। तो ये कृष्ण कथा का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसलिए कई बार हम सुनते हैं, बार बार हम सुनते हैं कि यदि हमें वास्तव में हृदय को शुद्ध करना है तो भक्तों के सानिध्य में रहकर कृष्ण कथा हमें सुननी चाहिए, प्रतिदिन सुननी चाहिए, अध्ययन भी करना है श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, और साथ साथ हमारे कानों के द्वारा भी हमें देखना चाहिए श्री कृष्ण को और उनकी लीलाओं को। हाँ, हमने कान शब्द का प्रयोग किया देखने के लिए, आंखों का नहीं, क्योंकि प्रमुखतः ज्ञान कानों के द्वारा पाया जाता है। इसलिए हमारे लिए श्रवण की पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं, कौन तृप्येत श्रृण्वान् श्रोतव्यः, कौन ऐसा अनुभवी श्रोता है जो कि भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनकर तृप्त हो जाएगा और कहेगा कि बस हो गया और मुझे नहीं चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। और यदि कोई कहेगा, इसका मतलब है कि वो श्रोतव्य नहीं है वास्तव में, अर्थात अनुभवी श्रोता नहीं है। जो भी अनुभवी श्रोता है उसमें तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के अमृत का स्वाद का अनुभव ले लिया है, चख लिया है उस अमृत को, इसलिए वो कभी इस अमृत को छोड़ेगा नहीं। इसका विकृत प्रतिबिंब है ये जितने भी आसक्तियां हमारे जीवन में पाई जाती हैं भौतिक जगत में। कोई किसी व्यक्ति के मन में मादक द्रव्यों के प्रति कोई आसक्ति हो जाती है, कोई शराब हो या कोई अन्य ऐसे पदार्थ हो, तरह तरह के नशे आदि होते हैं लोगों के जीवन में, तो ये विकृत प्रतिबिंब है। तो जैसे कोई व्यक्ति जिसको ऐसी बुरी आदत हो गई है मादक द्रव्यों का सेवन करने के लिए, वो बार बार सेवन करना चाहता है उसी चीज का, यदि भी वो जानता है कि कितना हानिकारक है, फिर भी आसक्ति इतनी हो गई है, उस चीज का स्वाद लग गया है उसे, और इसलिए उसी चीज को वो बार बार चखना चाहता है। कितनी कठिनाइयों का सामना करता है, यहाँ वहां से पैसे चोरी कर लेता है, कहीं से तो कुछ भी कोई भी व्यवस्था करके उस मादक द्रव्य को पा ही लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो अनुभवी सारग्राही वैष्णव होते हैं, वो येन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वो आकर कथा में पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद ध्यान पूर्वक कथा को सुने। तो यहां पर जैसे एक विकृत एक तुलना है, फिर भी इसे हम समझ सकते हैं। जैसे बाहर के लोग शराब आदि ऐसी चीजों से आकर्षित होकर आसक्त होकर उस शराब को बार बार पीना चाहते हैं, तृप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार से हमें भी श्री कृष्ण की कथाओं के प्रति, उनके नाम के प्रति आसक्त होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए। जब स्वाद हमें प्राप्त होगा तब हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। कभी कभी इस प्रकार के विकृत जो उपमाएं हैं वो भी शास्त्र में दी जाती हैं, जैसे कि श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं एक जगह कि जैसे एक तरुण और तरुणी के बीच में आकर्षण स्वाभाविक रूप से होता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से ये आकर्षण होता है। और जब ऐसे लगाव हो जाता है उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे एक तरुण और तरुणी के बीच में आकर्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, वैसे ही स्वाभाविक आकर्षण हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए, ऐसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। तो उसी प्रकार की एक तुलना हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि जब किसी ने कृष्ण कथा का स्वाद का अनुभव कर लिया है, इसे चख लिया है, तो फिर वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं स्वाद लेना बंद कर दूं। इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं पूर्ण तृप्त श्रीमान श्रुतज्ञ कि कौन ऐसे व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति विशेष करके, जो कहेगा कि बस अभी और मैं कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहता, इतने साल मैंने सुन लिए, अभी चलो समाप्त हो गया, अभी दूसरी कोई कथा हम सुन ले। तो वैसे तृप्त न होने के बारे में भी श्रीमद् भागवतम में कोई श्लोक है आप बता पाएंगे? जो श्लोक पहले आपने बताया श्रीमदाम स्वकथा कृष्ण, उससे ही पास में वाला श्लोक है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे इस श्लोक में ये नहीं बताया गया कि कैसे वो व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। कौन कुरिया कथा रहते, कौन ऐसे इस कथा को त्याग देगा? हाँ, ये भी राजा परीक्षित बताते हैं, जिससे हम इसी बात की पुष्टि देख सकते हैं कि वयम तुलवितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रीमतामस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। नैमि शरण में इकट्ठे हुए ऋषिगण कहते हैं कि वयम तुलवितृप्त्याम, हे सूत गोस्वामी, आप कृष्ण कथा बोलना बंद मत कीजिए, कहीं आपके मन में ऐसा कोई संशय उत्पन्न हो कि हम थक जाएंगे, हम ऊब जाएंगे, नहीं नहीं, आप बोलते रहिए। वयम तुलवितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रम, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण, उनके विक्रम, उनके जो क्रियाकलापों से, उनके लीलाओं से हम तृप्त हो चुके हैं, ऐसा मत समझे। वयं तु न वितृप्यामा, हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, अर्थात संतुष्ट हुए हैं सुनकर, परंतु हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अब बस हो गया, हमें और भी सुनना है। यत् श्रृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, हम पद पद पे कदम कदम पे जैसे कथा जारी रहती है, हमें नवीन प्रकार के ऐसे स्वादों का अनुभव मिल रहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे हमें स्वाद का अनुभव मिल रहा है। इसलिए कृष्ण कथा करना बंद मत कीजिए। तो जो इस प्रकार से रसिक भक्त होते हैं, और ऐसे रसिक भक्तों को हमारे मन में आदर्श बना के आगे चलना चाहिए, इनके पद चिन्हों में आगे चलने का प्रयास करना चाहिए, भले हम उनकी तरह ना हो इस समय, परंतु ऐसे जीवन में हमें आदर्श चाहिए। न कि कोई दुनिया के कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई सुंदर व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, इनको आदर्श बनाने के बजाय हमें ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों को आदर्श बनाना चाहिए जो ऐसे कहते हैं यश चिन्हताम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो ऐसे व्यक्तियों को आदर्श बनाने से, उनकी कृपा से एक दिन ऐसे आएगा जब हम भी ऐसे कह पाएंगे वयम तु न विद्यत्याह उत्तम श्लोक विक्रमे यश चिन्हताम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। इसलिए ये बार बार श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद से बारहवें स्कंद में हमें ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं। ये कृष्ण कथा के लक्षण हैं। तो ऐसे इन तीन चार श्लोकों में राजा परीक्षित अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं कि वो कैसे रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण के विवाह के बारे में सुनना चाहते हैं। संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी ने जैसे वर्णन किया तो उससे संतुष्ट नहीं हुए राजा परीक्षित, और विस्तार में चाहिए, अनियोर अनियोर और चाहिए। और देखिए ये आदान प्रदान होता है प्रवक्ता और श्रोता वर्ग के बीच में। जब श्रोता योग्य होते हैं और प्रवक्ता योग्य होते हैं तो इनकी जोड़ी बहुत मधुर होती है और इसमें रस का वर्धन होता है। जब दोनों में से एक या दोनों अधिकृत नहीं होते हैं तो मजा किरकिरा हो जाता है। यदि प्रवक्ता भौतिकतावादी व्यक्ति है जो अपने श्रोताओं को भौतिक मार्ग में आगे बढ़ाना चाहता है या उसको दक्षिणा आदि की अभिलाषा है तो फिर श्रोताओं के बीच में उनके हृदय में हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। यदि फिर वो सोचेगा कि अरे ये लोग शुद्ध भक्ति के लिए आए, मैं तो दक्षिणा के लिए बैठा हूं यहां पर, और उधर श्रोतागण बैठे हैं वो यदि चाहते हैं कि प्रवक्ता हमें ये बताए कि कैसे हम पुण्य एकत्र करें और दुनिया में धनवान हो जाएं, इसके बजाय ये तो शुद्ध भक्ति की बात किए जा रहे हैं, तो इस तरह की जोड़ी जो होती है वो ठीक नहीं होती। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक जोड़ियां हम देखते हैं, आदर्श प्रवक्ता आदर्श श्रोता। श्रील प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है, किताब है, आदर्श प्रश्न आदर्श उत्तर, परिपूर्ण प्रश्न परिपूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। तो प्रश्न कैसे किए जाने चाहिए, किस संदर्भ में किए जाने चाहिए, उनका विषय क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से जान सकते हैं। और राजा परीक्षित ने जब ऐसे प्रश्न किए तो सुखदेव महाराज जैसे प्रवक्ता को और उत्साह मिला। यदि देखिए कोई प्रवक्ता हो, भले वो योग्य हो या न योग्य योग्य न हो, जब वो देखता है कि श्रोतागण सब सो रहे हैं, कोई अपने मोबाइल फोन पर कुछ कर रहे हैं, है ना, तो उसको उत्साह नहीं होता है ना कुछ कहने के लिए। जब प्रवक्ता देखता है कि जो श्रोतागण है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आतुरता से सुन रहे हैं, तो वो भी उत्साहित हो जाता है कुछ कहने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से बार बार हम ये देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में कुछ कह देते हैं तो राजा परीक्षित बड़े उत्सुक होते हैं, आतुर होते हैं और उसे विस्तार में सुनने के लिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसके लिए कहते हैं समुत्कंठा, उत्कंठा होना लालसा, उत्कंठा अर्थात एक तीव्र इच्छा लोभ। तो राजा परीक्षित इतने ध्यान से सुन रहे हैं, हर बात पे वो और विस्तार में सुनना चाहते हैं, इससे सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो और विस्तार में विवरण करना शुरू कर देते हैं। तो कल हम ये सुनेंगे कि किस प्रकार से रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ। हरे कृष्णा। तो कोई एक दो प्रश्न लेंगे हम केवल और फिर माइक दे दीजिए, उसके बाद हमें भजन गाएंगे।
हरे कृष्णा महाराज।
हरे कृष्णा
महाराज। जी हमें जो 18वां श्लोक आपने बताया,
18वां श्लोक,
तो उसमें परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं कि राक्षस में कुछ विवाह है, मैंने सुना था पहले, ऐसा बता रहे। तो ऐसा बताया कि पहला भगवतम सुना है क्या उन्होंने, ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन से।
तो ये प्रश्न है कि क्या परीक्षित महाराज ने पूरा भागवतम पहले सुना था, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं इति श्रुतम। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं कि मैंने सुना था कि श्री कृष्ण ने राक्षस विधि के अनुसार रुक्मिणी देवी से विवाह किया था, ऐसे मैंने सुना था। तो प्रश्न ये है कि क्या पहले श्रीमद परीक्षित महाराज ने भागवतम सुना था? नहीं, संपूर्ण भागवतम नहीं सुना था। जिस प्रकार से अब वो सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, परंतु भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ वहां से तो अनेक बार सुन चुके हैं। अंततः श्री कृष्ण कौन थे? वो अर्जुन के प्रिय मित्र थे। और अर्जुन कौन थे? अभिमन्यु के पिता। और अभिमन्यु कौन थे? परीक्षित के पिता। तो अपने दादा के इतने परम मित्र थे वो, तो घर में तो बातचीत होती होगी, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कृष्ण के बारे में कहा। उस समय देखिए ना, तो कोई टेलीविजन के सिनेमा के बारे में कुछ बात करते थे ना, ऐसे जब चर्चाएं होती थी परिवार में भी सभी लोग मिल जाते थे, यहाँ वहां के प्रजल्प कम करते थे, पौराणिक कथाएं सुनाई जाती थी घर घर में, इसलिए बचपन से सारे लोग सुनते थे इन कथाओं। ठीक है,
यहाँ पे बता रहे श्रीयो माता, लेकिन वैष्णवी का जो रुक्मिणी की अनुसार लक्ष्मी जी होती है, ऐसा है कि लक्ष्मी जी रुक्मिणी लक्ष्मी जी रुक्मिणी के अंश के रुक्मिणी लक्ष्मी जी के अंश है?
अच्छा जी, ये प्रश्न है। श्रीयो मात्राम शब्द में ऐसे लिखा गया है या ऐसे इसका तात्पर्य कहा गया है कि वो लक्ष्मी देवी के अंश हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या लक्ष्मी देवी के अंश रुक्मिणी देवी हैं या रुक्मिणी देवी के अंश लक्ष्मी देवी है? जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे जितने भी लक्ष्मी देवियां हैं श्रीमती राधा रानी के अंश, श्रीमती राधा रानी से गोपियां कायावीरो वृंदावन में, द्वारका में जितनी भी रानियां हैं, और वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं। वास्तव में वृंदावन में परम गोपी तो श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंदी कौन है लीला को और मधुर करने के लिए? चंद्रावली। तो ऐसे भी बताया गया है कि रुक्मिणी देवी चंद्रावली के विस्तार है। तो चंद्रावली कौन है? वो भी राधा रानी की विस्तार। ठीक है, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण
महाराज, गोलोक वृंदावन की सारी गोपियां जो है वो ये लक्ष्मी तत्व है या वो जीव तत्व है? आपने बोला कि वो सारी गोपियां
अनेक प्रकार की गोपियां हैं, जो कायावीर गोपियां हैं जो राधा रानी के देवी शरीर से उत्पन्न होती हैं, वो जीव नहीं है। ऐसे जो जीव हैं, जो यहाँ से जैसे जो साधन भक्ति करके सिद्ध हो जाती है, फिर उनको गोपियों का शरीर मिलता है वहां पे, वो जीवात्माएं हैं। परंतु उनके साथ में जो मुख्य उनकी प्रधान गोपियां हैं, वो सब जीव तत्व नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी हम एक भजन गाएंगे, श्री नंद नंदन अष्टकम। सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंदनम सुचार्चितांग चंदनम नमामि नंदनंदनम
Thank you. दूसरे दिन की इस कथा में उपस्थित रहे हैं। तो कल इस